ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए दूर संचार क्षेत्र में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामाकृष्ण पी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 जो एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम मीडिया और टेक्नोलॉजी फोरम है, जिसे दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आयोजित किया और इसका ये सफल इस बार का आयोजन इस मायने में भी रहा कि इसमें बहुत बड़ी भागीदारी विश्व भर से देखी गई और खास बात यह भी रही कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हम आज इंडियन मोबाइल कांग्रेस के हवाले से भारत की दूरसंचार या टेलीकम्युनिकेशन की विश्व भर में बढ़ती साख और प्रगति पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामकृष्ण पी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
नमस्कार जी।
सबसे पहले हम इंडिया मोबाइल कांग्रेस पर आपसे अगर बात करें तो इस संगठन की अहमियत के इम्पोर्टेंस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, ये किस तरह से अहम है।
हम डिजिटल फर्स्ट के जो स्लोगन है या नारा है, जो देश में कोने कोने में डिजिटल की यूसेज बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे थे और लीडरशिप ऑफ मोदी जी के अंडर में, हम एक प्लेटफॉर्म बन गए हैं उसके लिए और हमें बहुत प्राउड है कि हम उस प्लेटफॉर्म को अभी हम काफी सही तरह से हम एस्टेब्लिश कर पाए एंड वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर द बिगेस्ट टेक इवेंट इन एशिया showing the digital first and the four pillars of digital first.
तो इस बार का जो कार्यक्रम रहा इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, इसके कुछ मुख्य हाइलाइट्स आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे, कौन कौन सी बातें निकल कर आईं और जो भी भागीदार बने इस असेंबली का, इस कांग्रेस का, इस सम्मेलन में क्या कुछ निकल कर आया?
एक है कि 5G में हम वर्ल्ड में नंबर 2 प्लेयर हो गए हैं। यदि नंबर ऑफ बेस स्टेशन हुआ है, कवरेज हुआ है, व्हाट हमारी जो कैपेसिटी है वो नंबर 2 है, ये तो एस्टेब्लिश हो गया। बट अभी हमारी प्रयास है 6G में हम क्या कर पाएंगे, इसकी स्टैंडर्ड्स बनाओ में हम अपना रोल कैसे निभाएंगे, कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है जब टेलीकॉम की स्टैंडर्ड्स बनते हैं, कंट्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कंट्री का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसके साथ इनोवेशन बढ़ते हैं, नए प्रोडक्ट्स आते हैं जो कल उसकी एक्सपोर्ट किया जा सकती है एंड सो इसलिए कंट्री का रोल 6G में क्या होगा, ये एक बहुत ही खास टॉपिक रही और इसमें हम काफी चर्चे किए। वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की जो WTSA के प्रोग्राम है वहां पे भी हमने काफी हमारी इंडिया की स्टैम्प बहुत अच्छी तरह से निभाई गई, एक नंबर 1 पॉइंट वो है। नंबर 2 AI पे काफी चर्चा हुई, AI की जो यूज केसेस 750 यूज केसेस जो दिखाए गए, AI की जो टॉपिक्स डिस्कस किया जाए, AI की जो क्वालिटी ऑफ स्पीकर्स आए देश विदेश से, आई थिंक AI पे इज वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक इस बार की IMC में है। द थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी पे। साइबर सिक्योरिटी पे क्योंकि जो नए इनोवेशन आ रहे हैं उनसे काफी हमारी डरावना होती है कि ये इनोवेशन कहाँ तक लेके जाएंगे, इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स आएंगे या और कुछ इश्यूज आएंगे, तो उस बारे में साइबर सिक्योरिटी की बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे भी काफी चर्चा हुई है। ये तीन टॉपिक के अलावा 5G यूज केसेस, 5G यूज केसेस में होती है जो एप्लीकेशंस, 5G के जो एप्लीकेशंस कुछ आए हैं बट काफी कुछ होने वाली है क्योंकि 5G की जो एग्रीटेक है, मेडटेक में है, एड्यूटेक में है या अदर माइनिंग में है, इनकी जो यूज केसेस है ये भी काफी चर्चे में। आई थिंक ये चार टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट इस बार IMC में रही।
तो अगर हम अपनी जो 5G 6G की तकनीक के बारे में ही आपसे जानना चाहें तो भारत के इस मामले में भविष्य के क्या लक्ष्य हैं, इसको लेकर कोई बात हुई? साथ ही हम इन दिनों सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सैटेलाइट सर्विसेज की भी बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी क्या मानक और कुछ लक्ष्य हमारे सामने हैं, इस मामले में कुछ चर्चा रही?
हाँ, चर्चा रही जरूर। इनोवेशन जो होने वाली है और स्टैंडर्ड्स जो अभी 6G में बनाने वाले हैं, 6G के कुछ स्टैंडर्ड्स के पेटेंट्स जो है वो भारत से हो गई, इसकी प्रयास तो आई थिंक गवर्नमेंट और इंडस्ट्री लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज, रिसर्च लैब्स सब लगे हुए हैं कि नई आने वाली 6G स्टैंडर्ड्स में इंडियन के मैक्सिमम पेटेंट्स बने। ये तो दिस इज वेरी क्लियर। सेकेंड बात जो हुई सैटकॉम और ब्रॉडकॉम ब्रॉडकास्टिंग में, सैटकॉम पे एक डिवाइस पे जो सैटकॉम की या ब्रॉडकास्टिंग की सॉल्यूशंस है, एक इंडियन स्टार्टअप है जिसमें बहुत अच्छा ग्लोबली बहुत रिकॉग्नाइज हुई है। वो भी प्रयास है कि इंडिया की ब्रॉडकॉम में और सैटकॉम में बहुत आने वाले दिन में बहुत अच्छी रहेगी। सैटकॉम में पर्टिकुलरली बिकॉज रूरल बॉर्ड जो अनकनेक्टेड विलेजेस है, अनकनेक्टेड एरियाज है, जैसी हमारी बॉर्डर्स एरियाज है, जैसी हमारी फॉरेस्ट एरियाज है और अनकनेक्टेड विलेजेस है, इनको कनेक्ट करने की बहुत प्रयास हो रही है और अगले कुछ महीनों में इसकी सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे।
और इसके अलावा हम जो दूसरी तकनीकें हैं, आपने एआई की बात की और इसी तरह से हम आईओटी की भी चर्चा करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं और साइबर सिक्योरिटी की तो आपने चर्चा की ही, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे जो तमाम क्षेत्र हैं उसमें जो आगे हमारी प्रगति है, इन क्षेत्रों को कैसे देखा जा रहा है और किस तरह से इंडिया मोबाइल कांग्रेस में इस पर विस्तार से प्रकाश डाला गया जिससे कि हम आने वाले समय में उसमें इन तकनीकों को लेकर न सिर्फ आत्मनिर्भर हों बल्कि हम भारत अपनी एक लीडरशिप की भूमिका इस मामले में निभाए।
इस बार की आईएमसी में यह तो बहुत क्लियर है कि हमारी जो इंडिया की जो इकोसिस्टम है, जैसे आप वेरियस सेक्टर्स में आप बोले हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो, एआई हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, ये सब दिखाने के लिए वर्ल्ड को देखने के लिए काफी कुछ मिला
जी।
जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने साइबर फिजिकल सिस्टम्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर ही 70 स्टार्टअप्स को वहां डिस्प्ले कराया है और सरप्राइजिंगली हम काफी कुछ रिसर्च कर रहे हैं। हमारी जो ब्रांडिंग है ठीक नहीं आती है, बट अभी आईएमसी एक मीडियम हो गया जिससे वर्ल्ड देख रही है कि ये इंडिया में काफी कुछ हो रही है। हम प्रीटी श्योर हम जो जो सेक्टर बात कर रहे हैं वो ग्लोबली यहाँ से काफी कुछ एप्लीकेशंस अभी बाकी देशों में इम्प्लीमेंट किया जाएंगे। काफी कुछ लर्निंग्स है उनको हमारी आईएमसी में देखने के बाद यूज केसेस, क्योंकि इंडिया की जो बेड जो इकोसिस्टम है उसमें टेस्टिंग के लिए बहुत बिग इकोसिस्टम है, बड़ी इकोसिस्टम है। यहाँ की जो प्रोडक्ट टेस्ट होके पास हो जाएगी वो तो वर्ल्ड में कहीं भी इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आई थिंक ये बड़ा प्रयास हो रहा है कि हम इनोवेशन में आए हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनको टेस्टिंग इंडिया में किया जा रहा है और कुछ ही सालों में ग्लोबल मैप में हमारी यहाँ टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है ग्लोबल मैप में बहुत कुछ दिखने को मिलेगी।
तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली के साथ इस कांग्रेस का ये इवेंट होना कितना महत्वपूर्ण रहा, और खास तौर पर अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो इस बार आंकड़े भी बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा संख्या में पार्टिसिपेशन देखा गया, तो ये कितना एक उत्साह का कारण है?
हम देखेंगे पार्टिसिपेशन को डिवाइड करेंगे तो दो ग्रुप्स में सर, हम एक ग्रुप होती है जो लोकल पार्टिसिपेशन है। लोकल पार्टिसिपेशन तो हर एक ईयर से बढ़ गई है, हमारी टोटल पार्टिसिपेशन काउंट अबाउट 1.73 लाख है, बहुत बड़ा नंबर है टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में, नंबर वन। नंबर टू जो होती है कि WTSA प्रोग्राम से कैसी है, WTSA प्रोग्राम से ये फायदा हुआ आईएमसी को इस बार कि हमारे 123 कंट्री प्लस से डेलीगेट्स आए। ये डेलीगेट्स काफी कुछ हमारी कंट्री का जो प्रोडक्ट्स है, सॉल्यूशंस है, एप्लीकेशंस है देखने को मिले। हम काफी जन को इंटरव्यू कराए, काफी जन से सर्वे किए और इनकी एक ही आ रही है कि उनकी एक्सपेक्टेशन इतना बड़ा इवेंट नहीं था और आने के बाद देखने के बाद उनको बहुत आश्चर्यजनक हुई कि इंडिया इतना वाइब्रेंसी कम्युनिटी है और टेक में इतना हो रहा है। हमने मैसेज तो बहुत क्लियर किया ग्लोबली और हम यही प्रयास करेंगे हर साल की आईएमसी से यही मैसेज जाए कि दुनिया में इंडिया एक बड़ा नाम रोशन करने वाला है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में।
अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें या इंटरनेट की बात करें तो ये अब देखने में आ रहा है कि भारत एक तो जहां अफोर्डेबल सर्विसेज की बात कर रहा है टेलीकॉम सर्विसेज की, वहीं तेज और कनेक्टेड सर्विसेज की भी बात कर रहा है, साथ में एक और शब्द हम सुन रहे हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी, तो इन सब के बारे में क्या कुछ चर्चा रही और क्या कुछ सोचा जा रहा है आने वाले समय में जो भी ऑपरेटर्स हैं या सरकार है उसके स्तर पर, जिससे कि एक तरफ हम सस्ता डिवाइसेस उपलब्ध हो सके लोगों को और तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले और ऐसी कनेक्टिविटी मिले जो सिक्योर हो और साफ सुथरी हो।
एक साइड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खड़े किए हैं टेलीकॉम के लिए हम उनमें ग्रीन सॉल्यूशंस ऑलरेडी ला दिए हैं। जैसी हमारी सेल साइट्स है, बेस स्टेशंस है, वो काफी कुछ पावर, डायरेक्ट पावर से नहीं होके बैटरीज में कुछ काम करते हैं, कुछ लोग सोलार में काम करते हैं, कोई विंड में काम करते हैं। ये सॉल्यूशंस तो ऑलरेडी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक साइड इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई, दूसरी साइड हुई डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स काफी कुछ अभी ग्रीन डेटा सेंटर्स आ रहे हैं। तो एक साइड से टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, जैसी एआई आ गई तो कंप्यूटिंग पावर बढ़ी है, कंप्यूटिंग की रिसोर्स जो इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ गए हैं, उससे भी देर इज ए बैलेंसिंग एक्ट करना है। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, हम तो इंफ्रा में तो कर दिए हैं, डेटा सेंटर्स पे हो रही है, कंप्यूटिंग एक्सरसाइज में काफी कुछ करनी है, वो ग्लोबल स्केल में हो रही है। आई थिंक हम काफी एरियाज में ग्रीन की इम्प्लीमेंटेशन, तो कंप्यूटिंग साइड में जो होगा वो तो हम ग्लोबल लेंस से देख के उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, बट इंफ्रा में तो हमने कर दिया है।
और आने वाले समय में अगर इनोवेशन की आपने बात की, उसको लेकर क्या कुछ करने की आवश्यकता है और कैसे इस मामले में विचार विमर्श हुआ, और साथ में हम इनोवेशन के साथ रिसर्च और डेवलपमेंट को भी यहाँ जोड़ लेते हैं, तो इन सब चीजों को लेकर अब भारत का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है, खासतौर पर टेलीकॉम सेक्टर में?
हम लास्ट 2-3 ईयर्स से देख रहे थे कि इनोवेशन और R&D फोकस, गवर्नमेंट की जो फोकस है उस पर काफी है। जैसे आप इनोवेशंस, हमारी क्या होती थी कि हम इनोवेशन सेकंड टीयर में इनोवेशंस करते थे, हमारी यहाँ से इंडिया से कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होती थी। अभी तो हम देख रहे हैं, हम उसी साइड बढ़ रहे हैं। जैसे 5G में प्रोडक्ट्स इंडिया में ज्यादा नहीं होने से भी हम काफी इनोवेशन किए हैं, जो अभी 6G में फायदा होगा। जैसे 6G के स्टैंडर्ड्स आएंगे, प्रोडक्ट्स आएंगे, सॉल्यूशंस आएंगे, हम यही देखने वाले हैं कि इंडिया के प्रोडक्ट्स वो स्टैम्प में होंगे, जो इंडिया के प्रोडक्ट्स 6G में नेटवर्क्स में काफी जगह इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यही स्टार्टअप्स का भी खोज है, जो ये प्रोडक्ट्स ग्लोबली लॉन्च करने की जो कैपेसिटी है वो हम बिल्ड करें और उस काइंड ऑफ स्टार्टअप्स को हम एनकरेज करें। आई थिंक IMC का भी यही मोटो है कि हम उन साइड ऑफ स्टार्टअप्स को या प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन SME सेक्टर को हम ग्लोबल विजिबिलिटी दें।
और अंत में आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में ये कहा था कि एथिकल AI और डेटा प्राइवेसी के लिए वैश्विक मानकों की बहुत जरूरत है, इस दिशा में हम कहाँ हैं और किस तरह से भारत आने वाले समय में, जो खासतौर पर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें तो निश्चित तौर पर भूमिका निभा ही रहा है, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके जो मानक अब तय करने हैं उसमें किस तरह से आने वाले समय में अपनी भूमिका निभाएगा, और अगर भारत एक लीड लेता है टेलीकॉम सेक्टर में तो उससे कितनी और ज्यादा भारत की विश्वसनीयता या भारत का भरोसा दुनिया भर में बढ़ेगा कि वो AI सेक्टर को लेकर भी लीड ले सकता है।
AI जो माध्यम है वो अभी तक इवॉल्व हो रही है, अभी तक फुली इवॉल्व नहीं है। ये दशा जो है इवोल्यूशन की, जिसकी AI की है, चलेगी और 2-3 साल तो चलेगी मिनिमम। इस बीच में देर सो मेनी हैसल्स होंगे, हमारे रुकावट आएंगे, जो सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं, डेटा प्राइवेसी कंसर्न होते हैं, फेकिंग हो सकते हैं, ये रोकने के लिए जो है वो भी इवॉल्व होंगे। ऐसी रेगुलेशन तो लगा जा सकती है, रेगुलेशन कंप्लीट रोके नहीं जाएंगे अभी, बट रेगुलेशन एक बाउंड्री लाइन तो खींचना पड़ेगी, वो खींचेंगे जरूर, गवर्नमेंट खींचेंगे, बट ये इवोल्यूशन पैटर्न में नए सॉल्यूशंस, नए सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, नए वे ऑफ टैकलिंग द प्रॉब्लम्स आएंगे और उसी को हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, कार्यक्रम में आप जुड़े और जो दूर संचार या टेली कम्युनिकेशन का क्षेत्र है उसमें भारत किस तरह से अपनी बड़ी संभावनाएं देख रहा है और हमारी वर्तमान प्रगति क्या है, इस बारे में विस्तार से आपने बताया, और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का हाल ही में जो आयोजन हुआ उसके बारे में भी आपने विस्तार से हमारे साथ चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
धन्यवाद, जय हिंद।
अभी आप सुन रहे थे दूर संचार क्षेत्र में भारत की प्रगति पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे इंडिया मोबाइल कांग्रेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामाकृष्ण पी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।